जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री राधा कुंड की जय श्री राधा कुंड आविर्भाव महोत्सव की जय श्री वृंदावन धाम की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे मूकं करोति वाचालम् लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य
नामने गौरत्वशे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्य भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण आज बहुत पावन दिवस है श्री राधा कुंड का आविर्भाव दिवस है राधा कुंड की महिमा का गान शास्त्रों में बहुत जगह की हुई है पुराणों में और हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्यों ने भी राधा कुंड की भूरी भूरी प्रशंसा की है महिमा का गान किया है और राधा कुंड इतना पावन इतना श्रेष्ठ क्यों माना जाता है इसका स्पष्टीकरण श्रील रूप गोस्वामी पाद करते हैं अपने उपदेशामृत में उपदेशामृत ग्रंथ तो आशा करते हैं आप सब ने पढ़ा होगा हमारे लिए ये एक प्राथमिक और मूल ग्रंथ है रूप गोस्वामी ने नौसुखिया भक्तों से लेकर प्रेमा भक्ति में स्थित भक्तों के लिए सबके लिए ये ग्रंथ लिखा है केवल 11 श्लोक इस ग्रंथ में है परंतु इन 11 श्लोकों में उन्हें समस्त तत्वों को रख दिया है सार रूप में हम सारे कृष्ण भावनामृत के दर्शन को पा सकते हैं शुरुआत में उन श्लोक खास करके उन लोगों के लिए हैं जो भक्ति की शुरुआत में हैं मध्यम अवस्था तक पहुंचे हैं साधन भक्ति कर रहे हैं और धीरे धीरे चलते चलते फिर वो साधन भक्ति में ही रागानुग भक्ति की अवस्था पे आते हैं जहां कि एक स्वाभाविक रूप से एक प्रेम हमारा भगवान के प्रति रहता है हम ब्रजवासियों के पद चिन्हों में चल के राधा कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करते हैं रूप गोस्वामी पाद कहते हैं तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे तदनुराग जनानुगामी कालम नये दखिल मिथ्युपदेश सारम अच्छा कृपया अपने अपने मोबाइल फोन बंद कर लीजिए आप बाहर निकालिए जेब से अपने थैली से और देखिए कि आपने बंद किया हुआ है या नहीं राधा रानी प्रसन्न नहीं होंगी तो रूप गोस्वामी के इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण रूप लीला आदि के बारे में हमें स्मरण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन आदि करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। सुकीर्तनानु बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। सु मतलब अच्छे ढंग से करना, बार बार करना, नित्य रूप से करना। स्मृत्य हो तो श्रवण कीर्तन स्मरण आदि जब हम नित्य रूप से करते रहेंगे तो हमारे मन में भी ये बातें बैठ जाएंगी। मनसी क्रमेण, तो क्रम से अपने मन में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और स्थिर और तीव्र होता जाएगा। और फिर साथ साथ किसी एक ब्रजवासी मतलब श्री कृष्ण के जो पार्षद हैं उनके पद चिन्हों में चल के जो अनुरागी भक्त हैं, जिनका अनुराग है, ब्रज भाव में जिनका प्रेम है, ऐसे भक्तों के पद चिन्हों में चलने का हमें प्रयास करना चाहिए। उनके अनुगामी हमें बनना चाहिए। तिष्ठन व्रजे, इस तरह से व्रज में वास करना चाहिए। साथ साथ में कालम नएद अखिलम, 24 घंटे ऐसे करना चाहिए। ये समस्त प्रकार के उपदेशों का सार है। तो वृंदावन का वास केवल शारीरिक रूप से नहीं होता, मानसिक रूप से भी होता है और ये महत्वपूर्ण है। यदि हम इसी भाव को स्वीकार करके दुनिया के या ब्रह्मांड के किसी भी भाग में रहेंगे तो हम वृंदावन में ही रहेंगे। दूसरी ओर वृंदावन में रह के यदि कृष्ण का स्मरण न हो, उनकी सेवा न करें, श्रवण कीर्तन न करें, तो फिर ब्रजवास का लाभ नहीं मिलेगा बल्कि अपराध हो बैठेंगे धाम के प्रति। तो ऐसे श्लोक, ऐसा वर्णन करने के बाद अब अंतिम तीन श्लोकों में 9वें, 10वें और 11वें में श्रील रूप गोस्वामी राधा कुंड की बात करते हैं। तो साधन भक्ति के बाद है भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो दूसरे शब्दों में ये तीन श्लोक जो हैं उन लोगों के लिए हैं जो भाव और प्रेम के स्तर में स्थित हैं, या तो फिर उन भक्तों के लिए जो इन स्तरों को प्राप्त करना चाहते हैं परंतु इनको बहुत सहज नहीं लेना चाहिए, इतना आसान नहीं है। फिर ये सहजीय भाव हो जाता है और इसकी चर्चा थोड़ा बहुत हम आगे चल के भी करेंगे। खैर, रूप गोस्वामी पाद ने राधा कुंड के बारे में तीन श्लोक कहे हैं और उनका जो पहला श्लोक है 9वां, उसका पाठ हम करेंगे ताकि हम समझ पाए कि राधा कुंड की महिमा क्या है, इतना महत्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में क्यों दिया जाता है। तो ये श्लोक अब है। आशा करते हैं कि आप सबने इस श्लोक को पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा। वैसे 10वें और 11वें श्लोक को हम नहीं पढ़ेंगे। वैकुंठा जनित वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद, वृंदारण्यमुदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धनः। राधा कुंडमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृताप्लावनात्। कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवा विवेकीनकः। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात्। वृंदारण्यमुदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धनः।
राधा कुंडम इहापि गोकुलपतेः प्रेमामृताप्लावनात्। कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकीनकः। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद्। वृंदारण्यमुदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धनः। राधा कुंडमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृताप्लावनात्। कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकीनकः।
श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है, क्योंकि वहां कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा, और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें श्रील रूप गोस्वामी पाद ने की हैं। यहां पर भगवान की संपूर्ण सृष्टि भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों के मिलाकर बहुत विशाल है, अचिंत्य है, हमारे कल्पना के बाहर है। संपूर्ण सृष्टि का 3/4 भाग ये आध्यात्मिक जगत है, जिसे वैकुंठ जगत कहते हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में। तो इस भौतिक सृष्टि से श्रेष्ठ वैकुंठ जगत है, क्योंकि वो आध्यात्मिक है। ये जगत है जिसमें हम निवास कर रहे हैं, ये तो भौतिक है, इसलिए वैकुंठ जगत श्रेष्ठ माना जाता है। परंतु वैकुंठ जगत से भी श्रेष्ठ वैकुंठाज जनित वरा मधुपुरी, वरा मतलब श्रेष्ठ, तो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरा है, मधुपुरी। क्यों? जनितः, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए थे, उनका जन्म वहां हुआ था, इसलिए मथुरापुरी ये वैकुंठ जगत से श्रेष्ठ माना जाता है। परंतु आगे चल के रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, तत्रापि वृंदारण्यम, तत्र अपि मतलब मथुरा से भी श्रेष्ठ वृंदारण्यम है, अरण्य मतलब वन, तो वृंदावन। तत्रापि वृंदारण्यम, क्यों? वृंदावन जो है वो मथुरा से श्रेष्ठ क्यों है? रासोत्सवाद, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यहां पे रास लीला रचाई थी, और ऐसे तरह तरह की लीलाएं उन्होंने प्रकट की थी। वैसे तो वृंदावन में, यदि हम ब्रज भूमि को वृंदावन कहें, जैसे वृंदावन शब्द की व्याख्या कई तरह से की जा सकती है, ये नगर भी वृंदावन है, ये संपूर्ण व्रज मंडल को भी वृंदावन कहा जा सकता है। तो ये द्वादश वन है, यहां पर 12 वन प्रमुख वन है, और भी कई वन है, जैसे कि ताल वन है, भांडीर वन है, भद्र वन, मधु वन इत्यादि बहुत सारे वन हैं, बहुला वन। तो ये सारे वनों में, इन सारे वनों में भगवान श्री कृष्ण ने तरह तरह की लीलाएं की, रासलीला भी की, इसलिए ये श्रेष्ठ माने जाते हैं। और वृंदावन से भी श्रेष्ठ क्या कोई स्थान है? उदार पाणी रमणात तत्रापि गोवर्धनः। तत्र अपि अर्थात वृंदावन के द्वादश वनों से भी श्रेष्ठ ये गोवर्धन है। क्यों ऐसे? उदार पाणी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली से गोवर्धन को उठाया था, अपने कर कमलों पे धारण किया था, इसलिए उनका नाम पड़ा गोवर्धन धारी। और साथ साथ रमणात, उन्होंने यहां तरह तरह के लीलाओं का आनंद लिया था। गायों को चराने ले जाते थे गोवर्धन पर, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ भी क्रीड़ा किया करते थे, साथ साथ में कभी कभी गोपियों के साथ भी यहां तरह तरह की लीलाएं हुई कुंजों में, गुफों में। इसलिए गोवर्धन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो भौतिक जगत से श्रेष्ठ वैकुंठ, वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन। अब गोवर्धन से भी कोई श्रेष्ठ स्थान है तो रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, राधा कुंडम इहापि, इह अपि, अपि मतलब इससे भी श्रेष्ठ, गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है राधा कुंड। क्यों ऐसे? गोकुलपति प्रेम अमृत आप्लावनात। गोकुलपति हैं श्री कृष्ण, तो उनके प्रेम के अमृत के रस का बाढ़ यहां पे राधा कुंड में है। राधा कुंड क्योंकि श्री कृष्ण के प्रेम से आप्लावित है, इसलिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। आध्यात्मिक जगत में हो, भौतिक जगत में हो, इसलिए रूप गोस्वामी पाद फिर कहते हैं, कुर्याद अस्य विराजतो गिरि तटे सेवाम विवेकी न कह। कौन ऐसा बुद्धिमान या विवेकी पुरुष है जो अपना स्वार्थ चाहता हो, अपना हित चाहता हो, वो गोवर्धन के तट में जो राधा कुंड है वहां राधा कुंड की सेवा नहीं करेगा? तो ये महत्वपूर्ण बात है हम सबके लिए। अब राधा कुंड की सेवा कैसे की जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। क्या वहां पे रह के ही सेवा की जाती है राधा कुंड की? वहां रहे बिना क्या राधा कुंड की सेवा नहीं होगी? आने वाले दो श्लोकों में भी जब रूप गोस्वामी पाद राधा कुंड की महिमा का वर्णन करते हैं, इनकी चर्चा विस्तार में करने के लिए आज हमारे लिए समय नहीं है। वहां वो राधा कुंड में स्नान करने पर बहुत जोर देते हैं और इसकी चर्चा भी थोड़े समय बाद हम करेंगे। परंतु रूप गोस्वामी पाद ने भी और श्रील रूप गोस और श्रील प्रभुपाद ने भी हमें बताया है कि किस भाव से राधा कुंड की सेवा करनी चाहिए। खैर, राधा कुंड की महिमा का वर्णन कविराज गोस्वामी पाद भी करते हैं चैतन्य चरितामृत में। राधा कुंड में और श्रीमती राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव अष्टमी तिथि में हुआ, श्री कृष्ण का आविर्भाव भी अष्टमी तिथि में हुआ, तो राधा कुंड का आविर्भाव भी अष्टमी तिथि में ही हुआ। ये महीना है कार्तिक महीना, श्रीमती राधा रानी का महीना है। इस महीने की अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी। इस महीने में खास करके जो भी सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके ऊपर श्रीमती राधा रानी की असीम कृपा होती है। तो राधा कुंड जो कि श्रीमती राधा रानी से अभिन्न है, वो इसी महीने में प्रकट हुए और अष्टमी तिथि पर, कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि में। साथ साथ श्री कृष्ण भी अष्टमी तिथि में प्रकट हुए थे। तो ऐसे राधा कुंड के आविर्भाव में और श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के आविर्भाव में भी हम थोड़ा संबंध देख सकते हैं। वैसे ये सारे जो पावन तीर्थ स्थान हैं, ये हमेशा भगवान के धाम में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यहां पर प्रकट हुए, नित्य रूप से वहां वो विराजमान हैं। परंतु जब भगवान यहां प्रकट होते हैं धरातल पर, अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं, इनको प्रकट लीला कहते हैं, तब जितने भी ब्रज भूमि के तीर्थ स्थान है, लीला स्थलियां हैं, वो भी यहां पर प्रकट हो जाते हैं। जैसे गोवर्धन है, यमुना है, जब श्री कृष्ण ने तय कर लिया कि उन्हें अब यहां प्रकट होना है, तो श्रीमती राधा रानी से जब उन्होंने कहा कि आओ आप भी मेरे साथ आओ, तो राधा रानी ने पहले यूं कह दिया कि जब तक गोवर्धन और यमुना वहां नहीं रहेंगे मैं नहीं आऊंगी। दूसरे शब्दों में वहां व्रज भूमि में भी गोवर्धन और यमुना जी हैं। तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से यहां भौम वृंदावन में भी गोवर्धन और यमुना जी का प्राकट्य हो रहा है और होगा। तो वैसे लीला के रूप से प्रकट अवस्था में यमुना जी, गोवर्धन भी किसी लीला के माध्यम से प्रकट हो जाते हैं, उसी तरह से राधा कुंड भी ऐसे प्रकट होती है। वैसे गोलोक वृंदावन की बात जब आती है, तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि राधा कुंड तो श्रीमती राधा रानी का तरल स्वरूप है, श्याम कुंड श्री कृष्ण का तरल स्वरूप है। जब श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के सुंदर रूप का स्मरण करती हैं, उनके मनमोहक बांसुरी की ध्वनि सुनती हैं, उनके शरीर के दिव्य सुगंध को सूंघती हैं, तो इतने भाव विभोर हो जाती हैं कि पूरी तरह से उनका दिव्य शरीर पिघल जाता है और पिघल के राधा कुंड बन जाता है। उसी तरह से जब श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के दिव्य गुणों का स्मरण करते हैं, दर्शन करते हैं, तो वो भी इतने प्रेमावेश में आ जाते हैं कि उनका दिव्य शरीर भी पिघल जाता है और श्याम कुंड बन जाता है। इस तरह से गोलोक वृंदावन में अनादि काल से ये श्याम कुंड और राधा कुंड विराजमान रहे हैं। कोई समय की बात नहीं कर सकते। आध्यात्मिक जगत में किसी भी चीज के लिए, किसी भी घटना के लिए, किसी भी वस्तु के लिए एक समय की सीमा नहीं लगाई जा सकती, जैसे कि यहां होता है। इस भौतिक जगत में हम कहते हैं ये चीज का जन्म हुआ, तो अगला प्रश्न होता है कब हुआ, परंतु ऐसा प्रश्न आध्यात्मिक जगत में नहीं किया जा सकता। सदैव वो विराजमान रहते हैं। और एक ऐसे बात बताई जाती है कि एक बार श्रीमती राधा रानी के मन में श्री कृष्ण के प्रति विरह की भावना इतनी बढ़ गई कि उनके दिव्य नेत्रों से अश्रु बहने लगे और उन अश्रुओं से राधा कुंड प्रकट हुआ। उसी प्रकार से श्री कृष्ण जब श्रीमती राधा रानी की विरह में थे, तो उनके आंखों से अश्रु बहने लगे, जिनसे कि श्याम कुंड प्रकट हुआ। तो खैर, ये गोलोक परव्योम गोलोक वृंदावन की कथा है, परंतु वही राधा कुंड, वही श्याम कुंड यहां पर भी प्रकट हुए धरातल में, इस भौम वृंदावन में। इस वृंदावन में और उस वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। आदि वराह पुराण में ये कथा आती है और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी जो श्रीमद भागवत के ऊपर टीका है सारार्थ दर्शिनी, इसमें उन्होंने ये वर्णन किया है। तो संक्षेप में उस वर्णन को हम दोहराना चाहेंगे। अवश्य आप सबने ये कथा बार बार सुनी होगी, फिर भी आज का दिन महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित है, और भगवान की लीलाओं को वैसे भी बार बार सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। ये कथाएं बड़ी रसमय होती हैं, इसलिए आज भी उनको हम पुनः सुनेंगे। एक बार हुआ ये कि श्री कृष्ण ने वृंदावन में अरिष्टा नाम के एक असुर का वध किया। हम सब तो जानते हैं कि कंस बारंबार प्रतिदिन प्राय किसी न किसी असुर को भेजा करता था श्री कृष्ण को मार डालने के लिए, परंतु श्री कृष्ण कैसे मारे जाते? उल्टा यही हुआ कि वो सारे असुर श्री कृष्ण के दिव्य कर कमलों के द्वारा मारे गए और उनका उद्धार हो गया। तो अरिष्टासुर भी आया था, उसने एक बैल का रूप धारण किया, श्री कृष्ण ने उसका वध तो कर दिया और जमीन पे पीट कर फिर उसका वध कर दिया और उद्धार कर दिया। अब श्री कृष्ण को तो बड़ा अच्छा लगा था कि मैंने इतने बड़े और शक्तिशाली असुर का वध कर दिया, अब सारे गोपियां मेरी प्रशंसा करेंगी, मेरा गुणगान करेंगी। तो इस भाव से लेकर आए, थोड़े अभिमानी स्वरूप में आए कि मैंने अरिष्टासुर का वध कर दिया, और गोपियां थोड़ी उनकी प्रशंसा करने वाली थी। तो गोपियों ने कहा, रे छी छी छी, हमारे पास नहीं आना, नजदीक नहीं आना, स्पर्श नहीं करना, गलती से भी हम अपवित्र हो जाएंगे। तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, अरे ऐसे क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि देखो, आपने गोहत्या की है, गोवंश हत्या, अरिष्ट ये एक बैल था, इसलिए आपने बैल का वध किया, इसलिए गोवंश या गोहत्या का पाप आपके ऊपर लगेगा, इसलिए आपको प्रायश्चित करना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने कहा, आपत्ति उठाई, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो एक असुर था, भले उसने बैल का रूप धारण किया हो, परंतु वो था असुर ना, तो इसमें क्या दोष है? तो गोपियों ने जवाब दिया कि नहीं, जो भी हो, लेकिन गोवंश तो था ना, बैल था, और इंद्रदेव ने भी जब वृत्रासुर का वध किया था, इंद्रदेव को भी प्रायश्चित करना पड़ा था, क्योंकि वृत्रासुर का जन्म भी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। जब इंद्रदेव ऐसे प्रायश्चित कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको करना चाहिए। तो फिर श्री कृष्ण ने सोचा कि चलो यही ठीक, मुझे ऐसे ही प्रायश्चित करना होगा। तो क्या करना होगा मुझे प्रायश्चित करने के लिए? गोपियों ने कहा, आपको ब्रह्मांड के समस्त तीर्थ स्थानों में भ्रमण करके आना होगा, और वहां जहां जितने भी पवित्र नदियां हैं, कुंड सरोवर आदि हैं, समुद्र हैं, उन सब में स्नान भी करना होगा। तो श्री कृष्ण को बड़ा घमंड आया, मैं क्यों जाऊं समस्त तीर्थ स्थानों में, समस्त तीर्थ स्थानों को मैं यहां बुलाऊंगा? हाँ, वास्तव में श्री कृष्ण का नाम है तीर्थपद। तीर्थपद का मतलब है जिनके चरण कमलों में समस्त प्रकार के तीर्थ स्थान निवास करते हैं, और जिनके चरण कमल ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान हैं, तो यह है तीर्थपद नाम का तात्पर्य, जब श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो श्री कृष्ण ने जोर से पुकारा, हे पाताल में बहने वाली भोगवती, आपके जल को यहां आप ले आइए, और समस्त तीर्थ स्थानों आप यहां पर प्रकट हो जाइए मेरे सामने। तो ये सारे तीर्थ स्थान जो हैं, ये श्री कृष्ण की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए कि अब हमारे स्वामी, हमारे प्रभु की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तुरंत प्रकट हो गए, और जब प्रकट हो गए तो श्री कृष्ण बड़े संतुष्ट हुए। तो उन्होंने क्या किया कि अपने चरण कमलों के एड़ी से एक खड्डा खुदवा दिया, और खुदाई करने के बाद उन्होंने इन सारे तीर्थ स्थानों से कहा आप यहाँ आइए, आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। तो सारे जो पवित्र स्थान हैं, तीर्थ स्थानों का जल आदि है, वो सब यहाँ आके उस स्थान में जाके उस कुंड को भर दिया। अब श्री कृष्ण ने स्नान किया, वहां पर स्नान करके बाहर निकले तो बहुत घमंड कर रहे थे, अब मैंने स्नान कर लिया, ये सारे पवित्र नदियां हैं देखो। तो गोपियों ने कहा हम भरोसा नहीं करते, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सारे पवित्र नदियां हैं। तो फिर सारे पवित्र नदियों को श्री कृष्ण ने बुलाया कि आप जरा प्रकट हो जाइए इनके सामने। तो एक के बाद एक ये सारे जो कुंड सरोवर समुद्र आदि हैं, तीर्थ स्थान हैं, वो सब प्रकट होने लगे। और श्रीमती राधा रानी और गोपियों के सामने हाथ जोड़कर प्रांजलि मुद्रा में खड़े हो गए। हे देवियों, मैं शोण नदी हूं, मैं ताम्रपर्णी हूं, मैं सूर्य पुत्री यमुना हूं, मैं गंगा हूं, मैं तीर्थराज प्रयाग हूं, मैं सरस्वती देवी हूं। ऐसे एक के बाद एक सारे तीर्थ स्थानों ने आके अपना परिचय दिया। तब गोपियों ने मान लिया कि ठीक है कृष्ण, ये वाकई तीर्थ स्थान हैं। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा तो ठीक है, अब कबूल कर लो कि मैंने स्नान करने में पवित्र हो गया, लेकिन देखो मैं तो शुद्ध हो गया लेकिन तुम लोग अभी भी अशुद्ध हो, क्योंकि तुम लोगों को मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन पाने के बाद भी कोई पुण्य कार्य आपने आज तक नहीं किए हैं, इसलिए आपको भी सारे तीर्थ स्थानों में जाना होगा, आपको भी स्नान करना होगा। अब श्रीमती राधा रानी को घमंड हो गया, मैं क्यों जाऊं सारे तीर्थ स्थानों में, मैं भी यहां कुंड प्रकट कर दूंगी। तो उन्होंने देखा कि अरिष्टासुर के खुरों से एक छोटा सा खड्डा था वहां पर, खुरों से जो खुदाई की थी अरिष्टासुर ने दौड़ते दौड़ते। तो श्रीमती राधा रानी ने अपने कर कमलों से मिट्टी निकालना शुरू किया, उसी स्थान से मिट्टी निकाल कर कहीं दूसरी जगह में डाल दिया। सारे गोपियां भी उनके साथ आई, अपने हाथों से अपने कर कमलों से मिट्टी निकालने लगे। कई बार ऐसे कहते हैं कि अपने चूड़ी है कंकण, उससे भी खुदाई करने लगे, इसलिए नीचे अंदर जो है उसे कंकण कुंड कहते हैं। तो मिट्टी निकाली और एक दंड के समय में 48 मिनट में वो कुंड तैयार हो गया। तो श्री कृष्ण देख रहे थे, आश्चर्यचकित हो गए, कह रहे इतनी जल्दी इन्होंने भी कुंड तैयार कर दिया, अब स्पर्धा अच्छी खासी हो गई। तो श्री कृष्ण का ठीक है, देखो हे गोपियां, अब मेरा कुंड है यहां श्याम कुंड, इसका जल ले लो, आप स्वीकार कर लो, अपने कुंड में भर दो। तो गोपियों ने कहा नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये श्याम कुंड का जल जो है दूषित हो गया है, क्योंकि आपने गो हत्या की थी, गो हत्या करने के बाद आपने यहां जल में स्नान किया, तो ये जल दूषित हो गया, हम नहीं स्वीकार कर सकते इस जल को। राधा रानी ने कहा मैं तो अभी मेरे गोपियों की सहायता से मानसी गंगा से कोटि कोटि कुंभों में जल लेकर आऊंगी और इस कुंड को बनाऊंगी जो तुम्हारे कुंड से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होगा। तो उस समय श्री कृष्ण ने श्याम कुंड में स्थित जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनको इशारा किया, तो फिर वो एक रूप में एक व्यक्ति एक देवी के रूप में प्रकट हो गए श्रीमती राधा रानी के सामने, और श्रीमती राधा रानी की प्रशंसा करने लगी कि हे देवी, आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, आपके महिमा का गान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, वो आपकी महिमा केवल कृष्ण ही समझ सकते हैं, बड़े बड़े शास्त्रों के जो विद्वान होते हैं वो नहीं जान पाते आपका महिमा को, यहाँ तक कि नारद जी हैं, सुखदेव जी हैं और ब्रह्मा जी शिव जी, यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी भी आपके महिमा को नहीं समझ सकती है,
केवल श्री कृष्ण समझ सकते हैं, और वही श्री कृष्ण हैं जिनके आदेश पर आप आज हम यहां पर प्रकट हुए हैं। उनके चरण कमलों में हम स्थित रहते हैं और वो श्री कृष्ण आपके चरणों की सेवा में सदैव रत रहते हैं। उनके हृदय में हमेशा उत्कंठा होती है आपकी चरण कमलों की सेवा करने के लिए। तो आपके कृपा कटाक्ष का सौभाग्य हमें भी दीजिए, जिससे हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा, हमारी सेवा भी आप स्वीकार कीजिए। तो श्रीमती राधा रानी तो बहुत कृपालु हैं, तो इनके हृदय पूर्वक याचना को सुनकर श्रीमती राधा रानी का हृदय पिघल गया और वो कहने लगी, ठीक है कहो आपकी क्या इच्छा है। तो फिर उन्होंने कहा, हमें आप स्वीकार कीजिए, हमारा जल भी आपके कुंड में आ जाए तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। तो श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण की ओर देखा, मुस्कुराए और उनको अनुमति दे दी जल को। तो फिर श्याम कुंड की जो दीवार को भेद करके फिर वो सारा जल राधा कुंड में भर गया। तो श्याम कुंड और राधा कुंड दोनों इस प्रकार से प्रकट लीला में यहां पर प्रकट हो गए। फिर श्रीमती राधा रानी ने कहा कि हे कृष्ण, आपका कुंड मेरे लिए बहुत प्रिय है, मैं वहां पर आया करूंगी और जो भी आपका भक्त श्रद्धा से आपके जल में स्नान करता है उसे मेरे प्रति बहुत आस्था उत्पन्न होगी, बहुत श्रद्धा प्रेम उत्पन्न होगी। और श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी आपके जल आपके कुंड में आऊंगा, जल विहार करूंगा, स्नान करूंगा और आपका जो कुंड है वो आपसे अभिन्न होने के कारण जितना आप मेरे लिए प्रिय हो आपका कुंड भी मेरे लिए उतना ही प्रिय रहेगा। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्यः कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सर्वैका विष्णुर अत्यंत वल्लभा। पुराणों में ये श्लोक आता है। ये श्लोक का अर्थ क्या है? यथा राधा प्रिया विष्णु हो, जिस तरह से श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण श्री विष्णु, विष्णु अर्थात कृष्ण यहां पर, जिस तरह से श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की बहुत प्रिय हैं, उनकी प्रिया हैं, ठीक उसी तरह से तस्याः कुंडम प्रियम तथा, तो श्रीमती राधा रानी का जो कुंड है राधा कुंड वो भी श्री कृष्ण के लिए उतना ही प्रिय है। क्यों ऐसे? क्योंकि श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ गोपी हैं, सर्व गोपीषु सर्वैका, समस्त गोपियों में से विष्णु अत्यंत वल्लभा, श्रीमती राधा रानी सबसे प्रिय हैं श्री कृष्ण की, इसलिए उनका जो कुंड है वो भी श्री कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है। कविराज गोस्वामी बताते हैं, कुंडेर माधुरी जैनो राधार मधुरी मां, कुंडेर महिमा जैनो राधार महिमा। तो राधा कुंड की महिमा श्रीमती राधा रानी के महिमा से कोई कम नहीं है, बिल्कुल वही है। श्री राधा कुंड का जो की जो मधुरी मा है, माधुर्य है, वो भी श्रीमती राधा रानी के मधुरी मा से कम नहीं है, क्योंकि दोनों बिल्कुल अभिन्न है। सरोवर, ये तो शब्द आपने हिंदी में सुना है, संस्कृत में इसे सर कहते हैं। तो सर, तो ये एक सर है, एक कुंड है, एक सरोवर है, लेकिन ये सरोवर किस तरह का सर है? सर को उल्टा कीजिए तो क्या होता है? रस होता है। तो ये सर जो है ये श्रीमती राधा रानी का रस है, प्रेम का रस है। तरल रूप में श्रीमती राधा रानी यहां पर प्रकट हुई हैं, सारे भक्तों को उनके भाव प्रदान करने के लिए, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। तो राधा कुंड तो प्रकट हो गया, श्री कृष्ण ने तो ऐसी लीलाएं तो कर ही दी, परंतु समय के बाद जब राधा कृष्ण दोनों का तिरुभाव हो गया, उनकी प्रकट लीला समाप्त हो गई, तो राधा कुंड श्याम कुंड को भी रहा नहीं गया। तीव्र विरह की भावना का अनुभव होने के कारण वो भी अप्रकट हो गए। फिर जब द्वारका लीला समाप्त हो गई भगवान श्री कृष्ण की, उनके जो प्रपोत्र हैं वज्रनाभ, वो हस्तिनापुर आए। वज्रनाभ के पिता थे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पिता प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पिता श्री कृष्ण। इस तरह से वज्रनाभ श्री कृष्ण के प्रपौत्र हुए। वृंदावन धाम से उनका बहुत गहरा संबंध है और हम सब जितने भी कृष्ण भक्त हैं वो वज्रनाभ के बहुत आभारी हैं कि उनकी वजह से भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थलियों का पुनः प्रकटीकरण हुआ। वो जब हस्तिनापुर आए तो महाराज युधिष्ठिर ने उनको मथुरा के राजगद्दी पर बिठाया, मथुरा के राजा घोषित कर दिया। और इस समय यहां के साधुओं ने उनसे निवेदन किया कि श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को पुनः आप प्रकट कराइए। तो जब वज्रनाभ सारे ब्रजभूमि में घूमने लगे, भ्रमण करने लगे, कोई भी तीर्थ स्थान उनको मिला नहीं, तो बड़े बेचैन हो गए, इतने हैरान हो गए, निराश हो गए कि एक जगह बैठ के शोक कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। उस समय व्रजधा में कल्प वृक्ष के रूप में प्रकट होकर वज्रनाभ से कहने लगी, आप चिंता नहीं करना। और उन्होंने उनको सारा मार्गदर्शन किया कि कैसे इन लीला स्थलियों को पुनः ढूंढा जा सकता था, प्रकट किया जा सकता था। फिर उन आदेशों के अनुसार वज्रनाभ यहां वहां भ्रमण करने लगे ब्रज में, और उन्होंने सारे भगवान के तीर्थ स्थलियों को पुनः प्रकट करा दिया। वज्रनाभ के समय में उन्होंने कई वृंदावन के मूल विग्रहों की स्थापना की, गोपीनाथ देव, गोविंद देव, वृंदा देवी, केशव जी इत्यादि जो मूल विग्रह हैं, 16 थे जिनको स्थापित वज्रनाभ जी ने किया था। उनमें से अब कोई भी नहीं है यहाँ पर, सारे के सारे बाहर चले गए। शायद अकेली वृंदा देवी होंगी काम्य वन में, और हाँ दाऊ जी है, बाकी सारे के सारे प्राय मुगलों के आक्रमणों के डर से वो राजस्थान आदि में चले गए, कोई यहाँ कानपुर के पास चले गए, कोई अधिकतर तो राजस्थान में चले गए। तो वज्रनाभ जी के प्रति हमारा ऋण जो है वो कभी हम चुका नहीं सकते। तो वो राधा कुंड को भी प्रकट कराना चाह रहे थे, तो वहां आए तो उन्होंने वहां श्याम कुंड में पहले कुंड बना दिया। आज भी जब श्याम कुंड का जल खाली किया जाता है, किसी अनेक वर्षों के बाद का एक बार किया जाता है, तो श्याम कुंड के भीतर एक छोटा सा और कुंड है, इसको वज्र कुंड कहते हैं। तो वज्रनाभ जी ने उस समय छोटा कुंड बनाया था। तो ऐसे राधा कुंड श्याम कुंड को वज्रनाभ ने पुनः प्रकट किया। कई साल बीत गए, फिर से ये स्थान अप्रकट हो गए। जब चैतन्य महाप्रभु यहां पर आए थे तो राधा कुंड को खोजते हुए आए, और उन्होंने देखा कि राधा कुंड श्याम कुंड दिखाई नहीं पड़ रहा है। ब्रजवासियों से पूछा, उनको भी खास कोई जानकारी नहीं थी, वो गोरा कुंड और काला कुंड, ऐसे गौरी कुंड, कारो कुंड ऐसे कहते थे। यह उस समय खेती होती थी वहां पर उस स्थान में, और बाकी स्थान में घना जंगल था, परंतु महाप्रभु ने तो पहचान लिया कि ये राधा कुंड श्याम कुंड है। भाव विभोर होकर थोड़ा सा जल जो वहां था खेती को, उसमें जाके लौटने लगे और स्नान किया। फिर महाप्रभु ने भक्ति रत्नाकर में इसका काफी विस्तार में वर्णन है, जो देख रहे थे ब्रजवासी गण वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे आपस में कि ये तो कोई साधारण सन्यासी नहीं है। और फिर उन्हें भी पता चला कि इन स्थानों का महत्व क्या है, परंतु यहां पर केवल बैठ के अपना भजन किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। वो इमली का पेड़ जिसके नीचे महाप्रभु बैठे थे वो आज भी है। तो आप में से जिन्होंने राधा कुंड का परिक्रमा किया है तो आपने अवश्य इस स्थान को भी देखा होगा। तो उस समय महाप्रभु को पता चला था कि हाँ ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है। तो महाप्रभु के बाद भी ये स्थान जाने तो गए, परंतु ज्यादा कुछ था नहीं वहां। जब रघुनाथ दास गोस्वामी यहां पर आए और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की अनुमति से यहां राधा कुंड में निवास करने लगे, राधा कुंड के तट को उन्होंने चुना अपना भजन करने के लिए। तो राधा कुंड ही क्यों चुना, उन्होंने एक भजन लिखा, एक गीत गाया, राधा कुंडाष्टकम, जिसको हम गाएंगे थोड़ी देर में। तो उसके पहले, राधा कुंडाष्टकम की रचना करने के पहले, उन्होंने और एक प्रार्थना लिखी, गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम, 10 श्लोक जिनमें कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रार्थना की है गोवर्धन से कि वो उनके ऊपर ऐसी कृपा करें कि उन्हें नित्य वास उनके निकट मिल जाए। निज निकट निवासम देही गोवर्धन त्वम। तो जब गोवर्धन के तट पे गोवर्धन के निकट निवास करने की प्रार्थना की और गोवर्धन वो पूरी कर दी, तो कौन सा स्थान था वो? राधा कुंड का स्थान है, क्योंकि गिरिराज के तट में समस्त वैसे कुंडों में से, सरोवरों में से राधा कुंड श्रेष्ठ है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी यहां पर अपना भजन करने लगे। अब एक बार अपना जप करते करते राधा कुंड में देख रहे थे। उस समय राधा कुंड का माप केवल लगभग 12 फुट से 12 फुट का हुआ होगा, बहुत छोटा। उन्होंने सोचा कि आने वाले दिनों में, आने वाले पीढ़ियों में बहुत से लोग यहाँ आएंगे, श्रद्धालु भक्तगण आएंगे, और ये राधा कुंड इतना छोटा है तो सारे लोग स्नान कैसे कर पाएंगे, राधा कुंड की कृपा कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो यदि ये कुंड को और बड़ा किया जाता, अच्छे घाट आदि बनाए जाते तो कितना अच्छा होता। फिर जैसे ही ये विचार उनके मन में आया, फिर अपने आप को धिक्कारने लगे कि अरे रे रे, मैंने क्या कर दिया, जब मैं ये जप कर रहा था, लीला स्मरण कर रहा था, उस समय भगवान के लीलाओं के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करने के बजाय मैं तो मैनेजमेंट के विषय में चला गया, ये व्यवस्थापन के क्षेत्र में चला गया। हालांकि ये भी तो ठाकुर जी के लिए ही है, राधा रानी के लिए है, तो ऐसे व्यवस्थापन की सेवा में भी कोई कमी नहीं है, ये भी पूरी तरह से दिव्य ही है। फिर भी उनको, उनका भाव ऐसे हुआ क्योंकि उनका ध्यान भंग हो गया। फिर अपने ध्यान को हटाने का प्रयास किया उन्होंने इस विचार से। उधर बहुत दूर एक व्यापारी था जो बद्रीनाथ जाने की तैयारी कर रहा था और बहुत सा धन भी ले जा रहा था साथ में बद्रीनाथ, बद्री विशाल को दान देने के लिए। जैसे वो रास्ते में था तो भगवान उसके सपने में प्रकट हुए और कहने लगे कि आप बद्रीनाथ नहीं जाना, मैं ही बद्री विशाल हूं, अभी आप ब्रजभूमि में जाना, राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बड़े मेरे भक्त हैं, वहां निवास कर रहे हैं, उनको आप ये धन प्रदान करना। तो वो तुरंत चले गए वहां पर और रघुनाथ दास गोस्वामी को ढूंढ निकाला और उनको बताया कि ऐसा ऐसा मुझे स्वप्न में हुआ है मेरा, तो ये धन आप ले लीजिए। रघुनाथ दास गोस्वामी आश्चर्यचकित हो गए और फिर समझने लगे, नहीं, ये वास्तव में राधा कृष्ण की इच्छा है कि ये होना चाहिए। तो फिर जीव गोस्वामी पाद भी उस समय वहां पे आया जाया करते थे, तो जीव गोस्वामी से उन्होंने विचार विमर्श किया। जीव गोस्वामी न तो सब बहुत बड़े विद्वान थे, न केवल बहुत बड़े भक्त थे, परंतु बहुत बड़े विद्वान भी थे और बहुत बड़े, क्षमा कीजिए, व्यवस्थापन के क्षेत्र में भी बहुत निपुण थे। तो सारी जो जमीन की खरीदी है, कागजात होते हैं, आप जानते हैं ना, कायदे कानून के बहुत सी चीजें होती हैं जमीन के लेन देन में, खरीदी में। उस जमाने में भी ऐसे हुआ करता था कुछ, राजा के दफ्तरों में जाके इसकी लिखाई पढ़ाई करना, सब करना, खाते में लिखवाना। तो जीव गोस्वामी पाद ने सारी व्यवस्था कर दी, लेन देन की बात होगी, जिनकी जमीन थी वो खरीद ली, और रघुनाथ दास गोस्वामी को पहले महंत उन्होंने घोषित कर दिया और रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर रहने लगे। वैसे जब श्याम कुंड बनाया जा रहा था तो उस समय वहां पेड़ थे, तो उन्होंने सोचा था रघुनाथ दास गोस्वामी को कि ठीक सही आकार देने के लिए श्याम कुंड को इन पेड़ों को भी काटना होगा। परंतु उस रात में युधिष्ठिर महाराज रघुनाथ दास गोस्वामी के स्वप्न में आए और कहने लगे कि रघुनाथ, हम पांच भाई, पंच पांडव, यहां पे श्याम कुंड के तट में भजन कर रहे हैं राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए। हम वृक्ष के रूप में हैं यहां पर, इसलिए काटना नहीं हमें। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इसलिए आज आप देखेंगे श्याम कुंड का आकार सही नहीं है, चौकोना नहीं है जैसे कि राधा कुंड का है। तो उस स्थान को छोड़ दिया रघुनाथ दास गोस्वामी ने और फिर उसकी राधा श्याम कुंड की सीमा उससे उसकी तरफ पास में से बनाई, पेड़ों को काटा नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पे रह के प्रतिदिन गौर लीला के ऊपर प्रवचन दिया करते थे, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के साथ 16 वर्ष जगन्नाथपुरी में रहे, प्रत्यक्ष अपनी आंखों से महाप्रभु के लीलाओं को देखा, स्वरूप दामोदर और अन्य सा भक्तों से भी बहुत कुछ सुना, इसलिए बहुत कुछ कहने के लिए था उनके पास। वहां पर साधुओं के बीच में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी आया करते थे और रघुनाथ दास गोस्वामी से बहुत कुछ सुना, और इसलिए आगे चल के फिर वो चैतन्य चरितामृत की रचना कर पाए। वहां पर एक बार सनातन गोस्वामी जब आए थे तो उन्होंने देखा रघुनाथ वो अपने भजन में इतने मग्न हैं कि एक शेर आया हुआ पास में, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। सनातन गोस्वामी को चिंता होने लगी और रघुनाथ से कहा कि रघुनाथ कुछ कुटिया तो बनाना चाहिए। उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने कुटिया बनाई वहां पर राधा कुंड के तट पे। वहां और बहुत सी लीलाएं हैं रघुनाथ दास गोस्वामी की और अन्य आचार्यों की भी, पर हमारे पास इस समय समय नहीं है। अब हम बात केवल करेंगे स्नान की। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है निवास की, राधा कुंड के पास में निवास करने की और स्नान करने की। वैश्रीशील रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृत में, तत्प्रेमेदन सकृत अपि सरह स्नातुः आविष्करोति। स्नातुः मतलब स्नान, तो यह स्नान करने से सकृत अपि एक बार मात्र राधा कुंड में यदि हम स्नान करेंगे, तत्प्रेमेदन तो तुरंत वही राधा रानी का जो भाव है, वही कृष्ण प्रेम है, वो हृदय में प्रकट हो जाएगा, आविष्करोति। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि हम तो सैकड़ों लोगों को स्नान करते हुए देखते हैं और देखते आए हैं इतने सालों में, लेकिन आज तक हमने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जब डुबकी लगा के ऊपर उठा तो अचानक कृष्ण प्रेम हो गया। तो ऐसे क्यों कहा गया है यहां पर, क्या कारण हो सकता है? तो कारण ये है कि ये केवल ये जो श्लोक है, जैसे हमने पहले कहा, ये भाव और प्रेम के अवस्था के भक्तों के लिए है। खास करके जो लोग निरपराधी होते हैं, नाम अपराध नहीं करते हैं, धाम अपराध नहीं करते हैं, भगवत अपराध नहीं करते हैं, वैष्णव अपराध नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए है। ऐसे लोग यदि यहां स्नान करें उनको हो सकता है। साथ साथ में कोई वैकुंठ भाव लेकर आए वो समझ नहीं पाएगा। जब तक हम ब्रजवासियों के पदचिन्हों में नहीं चलेंगे, उनके जो आचार्य हैं, उनके भक्त हैं, उनके शिक्षाओं के अनुसार नहीं चलेंगे, व्रज भाव हम नहीं समझ पाएंगे। तो पहले इन आचार्यों के आदेशों का पालन करके हमें शुद्ध होना है हृदय में। इसलिए हालांकि श्रील रूप गोस्वामी राधा कुंड के महिमा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, सर्वप्रथम उपदेशामृत के पहले श्लोक में ही वो क्या करते हैं, आप पहला श्लोक भी जानते हैं ना? कौन सा श्लोक है पहला वाला? वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरपस्थ वेगम इत्यादि, जिसमें वो अपने इंद्रियों को वश में करने की बात करते हैं, अपने मन के वेग को, अपने क्रोध के वेग को आदि वश में करने की बात करते हैं। शुरुआत रूप गोस्वामी वहां से करते हैं, फिर अंत में राधा कुंड तक पहुंचते हैं। इसलिए जब हम स्नान करते हैं, हो सकता है कि नहीं आता है कृष्ण प्रेम इतनी आसानी से, ये हमारे हृदय की बात है, भाव की बात है, तो स्नान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भक्तों के मन में प्रश्न आता है। वैसे जब प्रभुपाद जी भक्तों को लेकर यहां पर आए थे तो अनेक भक्त राधा कुंड में छलांग मार के कूद पड़े, और जैसे दूसरी जगह में करते हैं क्रीड़ात्मक भाव से एक दूसरे के ऊपर जल छिड़कना और हल्ला गुल्ला करना, वो सब करने लगे, तो प्रभुपाद जी नाराज हो गए, कहने लगे बंद करो, आज राधा कुंड में स्नान नहीं करना अभी। तो क्योंकि भक्तों ने थोड़े गलत भाव से स्नान किया वहां पर, इसलिए प्रभुपाद जी ने सोचा कि ये ठीक नहीं होगा, राधा कुंड के प्रति अपराध, अर्थात राधा रानी के प्रति अपराध, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था उस समय। लेकिन वही प्रभुपाद हैं जिन्होंने इन तात्पर्यों में इतना कुछ कहा है राधा कुंड के स्नान के बारे में। तो इसलिए यदि आपको स्नान करने की इच्छा है तो हमारी राय तो यह है कि आप अपने गुरु से पूछिए, यदि वो आपसे कहें कि करिए आप करिए, यदि वो कहते हैं नहीं करें नहीं करना। भाव अलग अलग हो सकते हैं, कोई कहेंगे हम छू नहीं सकते राधा रानी को, हालांकि हम इस योग्य नहीं हैं, हम दूर से ही बस प्रणाम करेंगे, थोड़ा आचमन लेके सर पे लाएंगे, हम वहीं रहेंगे। यदि वो आपसे कहें कि आप ऐसा कीजिए तो कीजिए, और यदि वो कहें कि स्नान करना लेकिन बड़े ध्यान से करना, ऐसे नहीं कि पानी छिड़काना और बड़े क्रीड़ा के भाव से करना, नहीं, बड़े गंभीरता से पहले राधा कुंड को प्रणाम करके, स्तोत्रों का पाठ करके, राधा कुंड की कृपा याचना करके, क्षमा याचना करके कि हमारे पैर अभी जल को हम छू रहे हैं, बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही हृदय से यदि हम करें, और यदि आपको ऐसे आदेश मिले तो कर सकते हैं। फिर वहां खड़े होकर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, या वहां देखकर बातचीत करना, हरी बोल कहना नहीं, बस बड़े प्रेम की भावना से आप कोई सुंदर जो वैष्णव भजन वो गा सकते हैं, खास करके राधा कृपा कटाक्ष इत्यादि है, हरे कृष्ण महामंत्र तो है, यदि आप कोई दूसरा भजन नहीं जानते हैं, राधा रानी की कृपा याचना कीजिए, फिर से उठ के श्याम कुंड में आइए, वहां भी इसी भाव से करिए श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रार्थना, फिर से राधा कुंड में आइए, प्रणाम कीजिए, चुपचाप ऐसे प्रजल्प न करते हुए, हल्ला गुल्ला न करते हुए, वहां के पंडों से झगड़ा फगड़ा न करते हुए, मोबाइल फोन को न देखते हुए और न बात करते हुए, बंद कर दीजिए आपका मोबाइल फोन आदि, वहां के लोगों से भी सम्मान से बात कीजिए। हालांकि लोग आके पंड कुछ कह सकते हैं, कुछ आपके ऊपर दबाव डाल सकते हैं दान आदि के लिए, आप विचलित न होकर बड़े शांत चित्त से वह रह के कर सकते हैं, यदि आपके गुरु का आदेश हो तो। जहां तक वहां रहने की बात है, हालांकि सेवा की बात, निवास की बात तो की गई है, परंतु प्रभुपाद जी ने, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भी बहुत इसके बारे में सावधान होने की होने का आदेश किया था, क्योंकि वहां पर तरह तरह के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग वहां के प्रामाणिक भक्त हैं, तरह तरह की धारणाएं होती हैं, कई सहजी लोग भी रहते हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं, जो सही नहीं है वैसे भी लोग रहते हैं। इसलिए हम हमारे संस्था के भक्तों को वहां जाके रहना ये कितना सुरक्षित है नहीं है, ये भी एक विचार का प्रश्न है। हर दृष्टि से सुरक्षा की बात है, शारीरिक रूप से और खास करके आध्यात्मिक रूप से। तो इसलिए आप अपने अपने गुरुजनों से आदेश ले सकते हैं, परंतु अधिकतर यही कहेंगे दूर से सम्मान कीजिए, और एक आध जब जाएंगे दर्शन के लिए कृपा याचना करके फिर से आ जाइए और अपनी सेवा जारी रखिए। तो ये हमारा भाव होना चाहिए। वैसे तो और बहुत कुछ है, परंतु अब समय समाप्त हो गया, लेकिन अवश्य मैं अभी एक ये भजन गाना चाहूँगा। आप सब साथ साथ में पीछे पीछे गा सकते हैं। राधा कुंडाष्टकम है ये, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा रचित, ठीक है। और जब आप वहां जाएंगे अवश्य इस भजन को आप गाइएगा, किताबों में है, हमारे किताबों में, उनको लेकर जाके। आप में से कितने भक्त राधाकुंड जाने वाले हैं, हाथ ऊपर कीजिए, ठीक है। तो जाएंगे तो ये भजन अवश्य आप वहां पे भी गाइएगा। वृषभ धनुज नाशान नर्म धर्मोक्तिरंगे, निखिल निज सखि भीर्यत् स्वहस्तेन पूर्णम्। प्रकटितमपि वृंदा रण्य राज्ञा प्रमोदैः, तदति सुरभि राधा कुण्डमेवाश्रयो मे। व्रज भुवि मूर शत्रोः प्रेयसीनां निकामैः, असुलभमपि तूर्णं प्रेमकल्पद्रुमं तम्। जनयति हृदि भूमौ स्नातुरुच्चैर्प्रियं यत्, तदति सुरभि राधा कुण्डमेवाश्रयो मे। अघरिपुरपि यत्नाद् अत्र देव्यः प्रसाद, प्रसरकृतकटाक्ष प्राप्तिकामः प्रकामम्। अनुसरति यद् उच्चैः स्नानसेवानुबन्धैः, तदति सुरभि राधा कुण्डमेवाश्रयो मे। व्रज भुवन सुधांशोः प्रेम भूमिर्निकामम्। व्रज मधुर किशोरी मौलिरत्न प्रियेव, परिचितमपि नाम्ना यच्च तेनैव तस्याः, तदति सुरभि राधा कुण्डमेवाश्रयो मे। अपि जन इह कश्चिद् यस्य सेवा प्रसादैः प्रणय सुरलता स्यात् तस्य गोष्ठेन्द्र सूनोः शपदि किल मदीशा दास्य पुष्प प्रशस्य तदति सुरभिराधा कुण्डमेवाश्रयो मे तटमधुर निकुञ्जाः क्लिप्तनामान उच्चैः निज परिजन वर्गैः संविभज्याश्रितास्तैः मधुकर रुतरम्या यस्य राजन्ति काम्याः तदति सुरभिराधा कुण्डमेवाश्रयो मे तटभुवि वरवेद्यां यस्य नर्माति हृद्याम् मधुर मधुर वार्तां गोष्ठचन्द्रस्य भंग्या प्रथयति मिथ ईशा प्राणसख्यालिभिः सा तदति सुरभिराधा कुण्डमेवाश्रयो मे अनुदिनमतिरङ्गैः प्रेममत्तालिसङ्घैः वरसरसिजगन्धैर्हारिवारी प्रपूर्णे विहरत इह यस्मिन् दम्पतीतौ प्रमत्तौ तदति सुरभिराधा कुण्डमेवाश्रयो मे अविकलमति देव्याश्चारुकुण्डाष्टकं यः परिपठति तदीयोल्लासिदास्यार्पितात्मा अचिरमिह शरीरे दर्शयत्येव तस्मै मधुरपुरतिमोदैः श्लिष्यमाणां प्रियां ताम् तदति सुरभिराधा कुण्डमेवाश्रयो मे तदति सुरभिराधा कुण्डमेवाश्रयो मे तदति सुरभिराधा कुण्डमेवाश्रयो मे फलश्रुति है इसकी अंतिम श्लोक जो था नौवा कि जो श्रीमती राधा रानी की सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित होता है और जो बड़े प्रसन्नता से इन 8 श्लोकों का पठन करता है जिसमें कि श्रीमती राधा रानी के कुंड का वर्णन है इस शरीर में भी भगवान श्री कृष्ण उसे श्रीमती राधा रानी और उनकी लीलाओं का दर्शन कराएंगे। तो पुनः अंत में कि हालांकि ये बहुत ऊंचा विषय है इसे सस्ता नहीं लेना है सहज नहीं लेना है हमारे दैनिक साधना हमारे जो विधि निषेध है नियम है और सही तरह से भक्तों के संघ के सुरक्षण में रहते हुए प्रभुपाद जी के चरण कमलों में रहते हुए हमें इस पथ में आगे चलते रहना है और सही समय पर श्री श्री राधा श्याम सुंदर की कृपा अवश्य होगी प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री राधा कुंड की जय। श्री राधा कुंड आविर्भाव दिवस महोत्सव की जय। श्री बहुलाष्टमी की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा।